الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل ظہر کے بعد بچوں میں بیان تھا, روزانہ ہی ہوتا ہے تربیتی پروگرام, تربیتی بیان اپنی نیت سے کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے, میرے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے. تو میں نے ایک کہانی سنائی جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے, فرضی کہانی, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنایا کہ ایک آدمی تھا ناک والا, جس کے ناک لگی ہوئی تھی. وہ ایسی بستی میں پہنچا جہاں پہ سارے نکٹے تھے, ان کی ناک ہی نہیں تھی, کسی کی بھی ناک نہیں تھی. جب وہ ناک والا ایسی بستی میں پہنچا جہاں سارے نکٹے, تو ان سارے نکٹوں نے ناک والے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور یہ کیا لگا ہوا ہے بھائی اس کے, یہ کیا لگا ہوا ہے اس کے, اتنا مذاق اڑایا, اتنا مذاق اڑایا کہ اس کے ذہن میں بھی بیٹھ گیا کہ ناک ہونا عیب ہے. اس نے بھی جا کے ناک کٹوا دی. اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے اصل حلیے کو تبدیل کر دیا, جو صحیح تھا اس کو غلط بنا دیا, اور پروپیگنڈے سے اور ماحول سے ایسا متاثر ہوا کہ سب کے ساتھ وہ بھی نکٹا بن گیا. اب جب نکٹا بنا تو کسی نے مذاق نہیں اڑایا, اس نے کہا بھائی یہی صحیح ہے. لیکن جب اگلی بستی میں پہنچا تو دیکھا کہ سارے ناک والے ہیں. تو یہ ایک حصہ ہے اس کہانی کا, اور میرے بیان کی ابتدا جس جو مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دے کر ایسا حلیہ دیا ہے جیسے کہ ناک ہے نا. یہ لباس سنت کا لباس, ٹوپی ہے, سنت والے بال ہیں, سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے, پجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے, مردوں کے لیے داڑھی کا رکھنا ہے سامنے سے ایک مشت, دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے, ایک چنے کے دانے کے برابر, چاول کے دانے کے برابر بھی اگر آدمی بال کٹواتا ہے حرام ہے, 24 گھنٹے کا گناہ ہے, طواف کر رہا ہے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ میں مبتلا ہے, سو رہا ہے تو بھی گناہ میں مبتلا ہے, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر وہ حاضری دے کر سلام پیش کر رہا ہے تو بھی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے, تو بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. تو ایسا گناہ, اب ہمیں دین اسلام نے یہ حلیہ دیا, عورتوں کے لیے برقع, عورتوں کے لیے حجاب شرعی پردہ, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے شرعی پردہ, ماموں زاد, چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, چچی سے, ممانی سے, سالی سے, بھابھی سے پردہ ہے مردوں کے لیے, اسی طرح ماموں زاد, چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, اور جناب والا کس سے, خالو سے اور پھوپھا سے بھی پردہ ہے. آج ایک پردے کہاں ہیں, اسی طرح بہنوئی سے بھی پردہ ہے میرے بھائی, اسی طرح نندوئی سے بھی پردہ ہے میرے بھائی, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ نہیں ہوتا. اب ایک آدمی دین اسلام پر عمل کرتا ہے, سنت کا لباس پہنتا ہے, سنت کے بال حلق کے کٹا دیتا ہے, سنت کی ٹوپی پہنتا ہے, سنت کے مطابق نصف پنڈلی شلوار کر لیتا ہے, اسی طرح ایک عورت کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ شرعی پردہ کرتی ہے, بہنوئی کے سامنے نہیں جاتی, نندوئی کے سامنے نہیں جاتی, ماموں زاد چچا زاد کے سامنے نہیں جاتی, خالو اور پھوپھا سے پردہ کرتی ہے, تو جتنے نکٹے ہیں نا سارے کے سارے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کون, جن کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں, جو برہنہ لباس پہنے ہوئے ہیں, چڈا پہن کر پورے کپڑے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں, ارے میاں کیا ہو گیا, آپ نے شلوار ذرا زیادہ اوپر نہیں کر لی, عجیب بات یہ شلوار میری اوپر, چہرے پر میرے داڑھی, تکلیف آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے بھائی. یہ وہی ہے कि मीडिया ने दीन इस्लाम को जो मुकम्मल एक फितरत इस्लाम फितरत है इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारा जो है ना ये दीन रखा है। आप कहेंगे एक मिसाल तो दे दो, छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अगर दो भाइयों में मुसलमान भाइयों में रंजिश हो जाए, इंसान हो जाता है सही, इंसानी तकाजे हो जाता है, भाई भाई में कोई बात हो गई, तो शरीयत ने ये नहीं कहा फौरी माफ कर दो, भाई इंसानी गुस्सा आता है ना, गुस्सा है, शरीयत ने 3 दिन का टाइम दे दिया कि 3 दिन के अंदर वो जो आग लगी हुई है ना वो ठंडी हो जाएगी, बस 3 दिन के बाद, 3 दिन से ज्यादा कतर रहमी नहीं है। तो ये ऐन फितरत है, अगर अल्लाह कह देते फौरी माफ करो तो ये फितरत के खिलाफ होती बात कि आग भड़की हुई है कैसे बुझेगी, परेशानी हो जाती। तो अल्लाह ताला ने ऐन फितरत के मुताबिक हमारी हर चीज को रखा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ख्वाहिश नफसानी रखी तो उसका तरीका दो गवाहों के सामने शादी कर लो, अब जो औरत पहले नाजायज थी वो हलाल हो जाएगी, उससे औलाद जो होगी वो नस्बत वाली औलाद होगी, आप उसके बाप कहलाएंगे, वो औरत उसकी माँ कहलाएगी। अल्लाह ने ऐन फितरत के मुताबिक ये दीन रखा है, फितरत के खिलाफ नहीं रखा मेरे भाई। जैसे दाढ़ी का आना फितरत है, दाढ़ी का कटाना फितरत के खिलाफ है। औरत को औरत क्यों कहा जाता है कि वो छुपाई जाती है चीज, आज कोई औरत अपने आप को छुपाए तो वो नकटी औरतें उसको ताना देना शुरू करती हैं, अरे तुम मर्दों से नहीं मिलती, अरे तुम ये नहीं करती, अरे तुम वो नहीं करती। ये हाल बिल्कुल वैसा ही है कि नकटे जमा हो जाते हैं और नाक वाले को ताना देते, इतना ताना देते हैं, अगर उनका हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में नहीं होता तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अगर अल्लाह वालों के हाथ में हाथ होता है तो उनका सब्र, उनका इत्मीनान, अरे मियां अल्लाह अल्लाह ताला इस पर अता फरमाएंगे, नेमतें बढ़ती चली जाती है मेरे भाई। तो यही है आज के जमाने के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है कि दौर ऐसा चल रहा, हर उल्टी चीज के लिए फिक्र की जाती है, इतना प्रोपेगेंडा करो, इतना प्रोपेगेंडा करो कि जो हकीकत है वो तब्दील हो जाए, असल बात तब्दील हो जाए। हाँ, मैं कल बच्चों को कह रहा था, हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाह अबरार उल्लाह साहब हरदोई, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खलीफा थे, वो फरमाते थे कि मेरे भाई एक बात ये बताओ कि एक पाव दूध की हिफाजत करते हो, बिल्ली मुंह ना मार दे, चूहा मुंह ना मार दे, ये एक पाव दूध कीमती है या हमारी माँ बहन बहू बेटी कीमती है? सोचने की बात है कि हमने अपनी माँ बहन बहू बेटियों को बेबुरका करके नकटों के कहने पर, भाई हम मना नहीं करते क्या आप स्कूल पढ़ाए ना पढ़ाए, पढ़ाइए, लेकिन क्या इस इस्लामी माशरे के अंदर जहां चंद चंद लोगों के अलावा सब अल्लाह ताला ने किसी को मर्द ही बनाया, किसी की औरत ही बनाया है, कोई और तीसरी जिंस नहीं बनाया, लेकिन उस तीसरी जिंस के लिए जो चंद गिने चुने लोग होंगे कानून साजी हो सकती है, जिसकी फिक्र की जा रही है गैरों के कहने पर, आज उस मुल्क में सूद क्यों नहीं हराम करार दिया जाता मेरे भाई, जबकि ये सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। इस मुल्क के अंदर पर्दे को क्यों नहीं नाफिज किया जाता, जबकि सबकी जरूरत है कि हमारी माँ बहन बहू बेटी की हिफाजत हो। इस मुल्क में ये निजाम क्यों नाफिज नहीं किया जाता? जी बिल्कुल पढ़े औरतें, मना नहीं, लेकिन कोई दारुल इफ्ता है बता दे जिसने मना किया हो? हाँ, तब मना करते हैं जहां लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, ना पढ़ाओ भाई वहां पे अपनी बच्चियों को। हाँ, भंभूरों के जना भंभूरे जो होते हैं ना, जो फूलों का रस चूसते हैं, अरे भाई उनके हवाले मत करो अपनी बेटी को। बेटियों को सजा बना के वहां पर मत भेजो। अल्लाह माफ फरमाए, कैसे कैसे हालात आ रहे हैं, मेरे सामने भी तो बहुत कम आते हैं, मेरे शेख के सामने तो बहुत ज्यादा। जनाब लड़के तस्वीरें बना लेते हैं और फिर तरह तरह की उसमें एडिटिंग करके और फिर ब्लैकमेल करते हैं हमारी बच्चियों को, और बेचारी बच्चियां खुदकुशियां करने पर आ जाती हैं, परेशानी की हालत में आ जाती हैं। ये जितने ट्यूशन सेंटर हैं 99.99% बदमाशी के अड्डे हैं, खुला अर्ज करता हूं, लेकिन फिर भी आज सिर्फ नकटों के कहने की वजह से, अरे हमारी बच्ची पढ़ेगी नहीं तो। हाँ, मेरे हजरत वाला ने एक बात बताई कि एक साहब आए, बड़े साहब बाशरा नमाजी, हजरत वाला के पास मस्जिद अशरफ में गुलिस्तान जौहर के अंदर, कि भाई वो मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता बता दीजिए। हजरत ने कहा भाई मैं ये तो काम करता नहीं हूँ। फिर हजरत ने पूछा भाई आपकी बेटी करती क्या है, तो बड़े ही जो है ना बदनामे जमाना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिया कि उसमें पढ़ती है। अल्लाह अकबर, आप जैसा नमाजी परहेजगार आदमी अपनी बच्ची को बेपर्दा हालत में उन ऐसे लोगों के हवाले करते हो मेरे भाई। कह रहे नहीं मैंने इस वजह से नहीं किया। भाई किस वजह से किया? कहा भाई शादी हो जाए और शादी के बाद अगर दामाद मर जाए। हजरत ने कहा अगर आपकी बेटी मर जाए, दामाद को पहले मार दिया, दूसरे का बेटा था पहले मार दिया, वो आपकी बेटी भी तो पहले मर सकती थी। सही है जी, राजिक तो अल्लाह है। अल्लाह ताला ने मगफिरत का वादा कहीं नहीं किया, लेकिन रिस्क का वादा किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा। रिस्क का वादा किया, जिसका वादा किया उसका एतमाद नहीं, और जिसका वादा नहीं किया फौरन कहते अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। हम जितनी भी बदमाशियां करें करने दो, हम अपनी शादियां जैसी भी करें करने दो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है जी। पूरी पूरी रात लोगों की बर्बाद करेंगे, फायरिंगे करेंगे, हाँ शोर शराबा करेंगे, हंगामे करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मिक्स गैदरिंग का गुनाह कबीरा करेंगे, और आखिर में मूवी बनाते हुए बच्ची के ऊपर कुरान शरीफ रख कर कहेंगे जी ये रहमत के साए में जा रही है। वो कुरान शरीफ भी ऐसी बच्ची पर लानत भेजता है, हाँ ऐसे माँ बाप पर लानत भेजता है कि मुझे मजाक बनाया है तुमने। हाँ मैं इस काम के लिए था कि तुम हराम काम करोगे और हराम काम को जो है सिर्फ साया देकर गुजार दोगे और काम बन जाएगा। इसी वजह से आज हरमैन शरीफैन के अंदर दुआएं हो रही हैं, अल्लाह वाले जाकर रो रो कर हर रातों को उठकर तहज्जुद में दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह रहम फरमा दे, लेकिन रहमत की सूरत नजर नहीं आ रही। क्यों भाई? लूत अलैहिस्सलाम पर की कौम पर जब आजाब आया तो वो फरिश्ते, तीन फरिश्ते थे, जिब्रील अमीन भी थे, हजरत मिकाइल भी थे, हजरत इसराफील भी थे। तीनों फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे कि आपकी औलाद पैदा होगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि भाई अब आगे का कहाँ आपका सफर है? का आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, अल्लाह ताला ने उनको उर्दुन के एक मकाम पर जो है भेजा था एक कौम की इस्लाह के लिए, वहां पर उनको जो है नबूवत अता फरमा कर भेज दिया गया था कि आपके भतीजे की कौम बड़े उल्टे काम करने लग गई है, इस पर अजाब अल्लाह ताला का अजाब का फैसला हो चुका है, हम उनको अजाब देने जा रहे। फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे बातचीत शुरू कर दी, भाई थोड़ा मौखर कर दो, हो सकता है इसलाह हो जाए। हाँ और अल्लाह ताला से मौखर करने की दुआ भी करने लगे, लेकिन कुरान पाक गवाह है इस बात का कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी इस बारे में कबूल नहीं फरमाई। मालूम क्या हुआ? हाँ कि जब अल्लाह का अजाब मुसल्लत हो जाता है तो फिर वलियों की दुआएं तो क्या, नबियों की दुआएं भी उस वक्त उस कौम के हक में कबूल नहीं होती। हाँ बहुत सख्त मामला है, बहुत सख्त मामला है। आज हम सबको अपनी इस्लाह की फिक्र की जरूरत है मेरे भाई। सबकी सबके दिमाग उलट गए हैं, सबके दिमाग उलट गए। हाँ शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये दो कौमें ऐसी हैं जो काफिर तो थे ही थे, लेकिन इनके अंदर दो ऐसे ऐब थे जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनको अजाब का मुस्तहिक ठहराया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उल्टे काम किया करती थी, हाँ फेले खबीस किया करती थी, सब जानते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम काफिर तो थी, नाप तौल में भी कमी करती थी, अल्लाह ताला ने इस नाप तौल की कमी को अजाब का जरिया बना दिया। भाई वो तो काफिर थे, पहले तो मामला कुफर का है ना, ईमान लाओ तो बात की बात है ना, लेकिन अल्लाह ताला को ये दो अमल हाँ कुफर के साथ भी कबूल नहीं है। मतलब कुफर तो है ही, हाँ लेकिन कुफर के बावजूद अजाब का वजह, हाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम का बदफेली करना और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के नाप तौल में कमी करना। क्या आज नाप तौल की कमी हमारे अंदर नहीं? हमारे एक दोस्त मस्जिद से निकले, हाँ अब वो जो है आलू बेच रहा है, पुरानी बात हो गई, आलू बेच रहा है या प्याज बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, और जनाबे वाला वजन करके सब ले जा रहे हैं, बड़ा रश लगा हुआ है। हमारे उस दोस्त है ना होशियार भी जरा ज्यादा होते हैं, उन्होंने उससे लिया और साथ ही एक दूसरे दुकान वाले के पास चले गए, जरा इसको तोलो, पता चला डंडी मारी हुई है। वो आके उन्होंने जरा से दूर से झांका तो बाट के नीचे कुछ डंडी लगी हुई थी। इन्होंने उसके कान में आके कहा भाई ये क्या बदमाशी है, अभी बताऊं सबको, तो माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा। जब एक सब्जी वाला ये करप्शन कर रहा है, हर एक आदमी अपनी अपनी जगह जो है ना करप्शन कर रहा है, नाप तौल में कमी कर रहा है, जरा सा नाप के देते हैं जरा खेच के दे देंगे कपड़े, पता चला वापिस आओ कुर्ता सिलने के लिए दिया था बनियान सिल के आ जाता है। सही है जी, वो कह रही यार मैंने तो अपना नाप दिया था, क्या पता नहीं कपड़ा ऐसा ही था भाई। सही है जी, कपड़ा ऐसा ही था, कसमें खाकर बेचते रहेंगे, नाप तौल में कमी कर रहे हैं। आज हम जो है वही काम कर रहे हैं जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी मेरे भाई, आज हम सारे वही काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला का ऐलान जंग है सूद के मामला करने वालों के बारे में। हाँ, और आज सूद के मामला कब से पाकिस्तान बना 1947, आज 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में यह मसला दिमाग को नहीं आया कि जनाबे वाला इस सूद को खत्म किया जाए, लेकिन यह मसला जहन में आ गया कि हमारी 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी के अंदर अगर 400 500 और 1000 2000 आदमी बेचारे अगर जो है अपने मामले में कमजोर हैं, हाँ, तो जनाब तीसरी कोई कौम है या उनको तीसरा कोई नस्ल कह दीजिए, तो उनकी फिक्र के लिए बिल पास हो रहा है और उसकी आड़ के अंदर बदमाशियों के धंधे खोले जा रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद, ये जो हमने पत्थर का आजाब बरसाया है ना, हाँ दूसरी कौमों सुन लो, ये पत्थर का आजाब तुमसे भी दूर नहीं है। हाँ, ये पत्थर का आजाब उस वक्त बरसा था, पत्थर का आजाब आज भी बरस सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि इज्तिमाई तौर पर तो कौम तबाह नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे जगह पे अल्लाह आजाब का नमूना दिखाते रहते हैं। अब हमारा और आपका काम क्या है, जैसे लूत अलैहिस्सलाम ने, हाँ, वो चार बस्तियां थी, चार बस्तियों में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, 6 लाख आदमियों में, 6 लाख आदमियों में सिवाय उनकी दो बेटियों के कोई भी ईमान नहीं लाया, यहां तक कि उनकी बीवी भी ईमान नहीं लाई। पहले जमाने के अंदर काफिरा से निकाह जायज था, इब्तिदाए इस्लाम में भी इसको बाकी रखा गया, बाकी बाद में इसकी ममानियत कर दी गई कि कोई मुसलमान किसी काफिरा से निकाह नहीं कर सकता, कोई काफिरा किसी मुसलमान से निकाह नहीं कर सकती। अहले किताब का मसला है वो अलहदा है, अहले किताब का मामला अलहदा है। बहरहाल तो 6 लाख आदमियों में सिर्फ ईमान लाने वाली दो बेटियां, सिर्फ दो बेटियां हैं। आप सोचे हमारे करने का काम क्या है, हमारे करने का काम यह है कि जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को लेकर और उनके सामने उनके अमल बद की इजहार करके कि भाई इस अमल से हम बरी हैं, हाँ इन्नी लिअमलिकुम मिनल कालीन, हाँ अल्लाह से कह रब्बी नजीनी वाली बिमा यअमलून, अल्लाह से कह रहे अल्लाह नबी होकर अल्लाह मुझे और मेरे अहल को उन कामों से बचा लीजिए जिससे जो ये अमल करते हैं, हम इनके साथ नहीं है, तो हम तो बरात का इजहार करें ना। हाँ, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई पकड़ आती है तो उन लोगों पर आए जो इसमें शामिल हैं, हम इससे बरात का ऐलान करते हैं, हम इससे कोई खुश नहीं है। हमारे पास जाहिर है कि हुकूमत नहीं, हमारे पास कोई और तरीक़ेकार नहीं, लेकिन ये तरीक़ेकार जरूर है हमारे पास कि अपने अपने तौर पर जनाबे वाला हम एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें नहीं, और इसका असर पड़ता है। आजकल तो आप लोग तो व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो खैर के लिए इस्तेमाल करो ना। हाँ, कि अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए आने वाली नस्ल, अभी तो उलमा इतना समझाने वाले मौजूद हैं, सोचो आने वाली नस्ल का क्या हाल होने वाला है 20-22 साल बाद, 15 साल के बाद हमारी नस्लों के अंदर से मर्द औरत का तफावत खत्म किया जाना है। असल मकसद तो इसके पीछे ये है ना, जो बिल पास होने चाहिए। हाँ, कितने अरसा हो गया, 20-22 साल हो गया, सूद के खिलाफ फैसला आए हुए, उस पर अमल दरामद ही नहीं होता। बदमाशी के हर अमल पर औरत आजाद है, भाई मर्द भी आजाद है, इसमें क्या बात है। अल्लाह ताला ने औरत की आजादी मर्द जो है घर तक रखी है, मर्द की आजादी बाहर तक रखी है, हर एक को उसका जो है ना एक हद बता दी, तुम्हारी हद यहां है, तुम्हारी हद यहां है, तुम्हारी हद यहां है। जिसने पैदा किया वही हमें हुदूद बयान करेगा मेरे भाई। तो खुलासा ये मेरे प्यारे भाइयों, जो दीन पर अमल करने वाला तबका है, जिसको अल्लाह ने शरीयत सुन्नत की तौफीक अता फरमाई, सबसे पहला काम तो ये करे कि किसी को हकीर नहीं समझना। अगर किसी भाई की दाढ़ी नहीं तो हम हकीर नहीं जानेंगे। अरे भाई मुसलमान तो मुसलमान, किसी काफिर को भी हकीर नहीं जानेंगे, हम तो उनके लिए दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें भी हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे, अल्लाह हमारे भाई को भी दाढ़ी की तौफीक दे, हमको भी दाढ़ी की तौफीक दे, हकीर किसी को नहीं जानना। लेकिन इसके साथ साथ अगर दुनिया में मुब्तला लोग, आप लोग दीनदार लोगों को घेर के बैठ जाएं। जैसे एक अल्लाह वाले एक जगह गए दावत के अंदर, तो उन्होंने खुद जिक्र किया उनके कजन वगैरह आए हुए थे, मामूजाद चचाजाद वगैरह, वो दुनिया पढ़े लिखे बड़ी बड़ी पोस्टों वाले, बड़ी बड़ी तनख्वाहों, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। हाँ, ये बेचारे मोटरसाइकिल पे 1976 का मॉडल लेकर पहुंच गए जनाब। तो क्या होता है दिल के अंदर, होता है ना कि भाई मौलवी साहब आज फंसे हैं, तो इस मौलवी साहब को तो आज नीचा दिखाना है कि तुमने मदरसे में पढ़कर क्या कमाल कर लिया, क्या हासिल हो गया। तो सबने अपनी अपनी जो है तनख्वाहें बताना शुरू की, मेरी 5 लाख रुपए तनख्वाह है, गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, ये पेट्रोल मिला हुआ है। अच्छा भाई, मकसद क्या था? मौलवी साहब को नीचा दिखाना। दूसरे ने कहा मेरी इतनी है, तीसरे ने कहा इतनी है। अब मौलवी साहब, आपकी कितनी है? कहा मुझे तो तनख्वाह मिलती नहीं है। अरे तनख्वाह नहीं मिलती तो जीते कैसे हो? हाँ, कहा वो तो हमारा छोटा मोटा दुनिया का वजीफा है, हमारी तनख्वाह तो आखिरत में अल्लाह जन्नत में अता करेंगे। तुम्हें यहां दे रहे हैं, हमें वहां देंगे। अपनी अपनी मर्जी है, सही है जी, अपनी अपनी नियत है, जैसे चाहो देख लो। अकलमंद आदमी जो होता है सफर पे खर्चा करता है। सब मुसाफिर हो और यहां से जाकर जनाब वाला हैदराबाद में ठहरना हो तो फटाफट वहां पे जो है 5 करोड़ रुपए का एक बंगला खरीदेगा, 2 दिन ठहरना है। क्या बेवकूफ आदमी, किसी भी जो है मुनासिब से होटल में जो साफ सुथरा हो रह लो, बस चलो आगे, उससे आगे चलो। हमारा तो स्टेशन आखिरी स्टेशन जन्नत है ना भाई। तो जन्नत की तैयारी करनी है, जन्नत में मांगना है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह खूब नेमतें अता फरमा। और ये बात उन मौलवी साहब ने खुद नहीं कही, चूंकि एक आलिम दीन जो होता है ये वारिसीन अंबिया है, अल्लाह ताला ने इनको नबियों की विरासत अता फरमाई है। और हर नबी ने उलमा बैठे सूरह शुआरा 19वां पारा नबियों का किस्सा जिक्र करने के बाद हर नबी का एक कौल जिक्र किया है, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं तुमसे कोई उजरत थोड़ी मांग रहा हूँ, तनख्वाह थोड़ी मांग रहा हूँ, मेरी उजरत, मेरा जो ना बदला तो रब्बुल आलमीन की जात पर है। तो यही जुमला उन मौलवी साहब ने दोहराया कि दुनिया में हमें तनख्वाह कहाँ मिलती है मेरे भाई। हाँ, दुनिया में तनख्वाह कहाँ मिलती है? आज जाइए आप अपनी बड़ी बड़ी मस्जिद है ना, आप लोग बड़े बड़े इलाकों में 600 और 400 गज के रहने वालों, जरा अपने इमाम की तनख्वाह तो मालूम करो। हाँ, इमाम के रिहाइश का जरा जाविया तो खींचो, अपने मस्जिदों के अंदर मौजिन साहब की रिहाइश का जाविया तो खींचो कि किस तरह की रिहाइश दी हुई है, किस तरह के जनाब वाला इमाम साहब को रिहाइश दी हुई है, किस तरह के खादिम की रिहाइश दी हुई है। और है 600 गज के और 400 गज के बंगले, मस्जिद में एसी लग जाएगा, मस्जिद के अंदर अच्छा लाखों रुपए का कारपेट बिछ जाएगा, लेकिन ना इमाम साहब की रिहाइश अच्छी करेंगे ना मौजिन साहब की रिहाइश अच्छी करेंगे, चाहे वो नॉर्थ वाले क्यों ना हो। हाँ, कुछ नॉर्थ वाले भी बैठे ना, सुने तो अकल नहीं है तुम्हारे अंदर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें 400 गज का बंगला दिया है, इमाम साहब को तुम ऐसा देते हो। बेचारे छुपन छुपाई खेलते हैं, बेगम एक कमरे से दूसरे कमरे में आती है, दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं, छुपन छुपाई खेलते रहते हैं। दोनों छुपन छुपाई खेलेंगे, कमरे इतने छोटे छोटे, क्या इमाम साहब का काम ही क्या है? सोना है, नमाज पढ़ाना है, और काम क्या करना? तीसरा काम रात को तहज्जुद में उठ के मस्जिद कमेटी के लिए बद्दुआ करनी है, वो दुआ करनी है। आप बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, दुआ करनी है, और क्या करना? सही, जाके जायचा तो खींचो जरा अपना अपना कि हम लोग करते क्या हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी आलिम ने, कभी ऐसा हुआ कि मस्जिद अख्तर के बाहर एहतजाज हो रहा हो, भाई इमाम साहब आज एहतजाज पर 2 नमाजें नहीं पढ़ाएंगे, क्यों भाई? तनख्वाह बढ़ाओ। भी ऐसा हुआ किसी मस्जिद के आगे एहतजाज हुआ? कभी इमाम साहब ने एहतजाज किया? हाँ, 3 रकात में सलाम फेर दिया, क्यों भाई? कहा जितनी तनख्वाह मिलती उतनी नमाज पढ़ाता हूँ। कभी किसी इमाम साहब ने कहा? कभी इमाम साहब ने नहीं कहा मेरे भाई। हाँ, डॉक्टर साहब एहतजाज पे चले जाते हैं, हमें हमारी सहूलियात दी जाए। पायलट चले जाते हैं कि जनाब वाले हमारी हमारी सहूलियात दी जाए। इंजीनियर साहब चले जाते हैं, सही, हमें हमारी सहूलियात दी जाए। हर तबका जनाब बायकॉट पे जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन वाला बायकॉट पर नहीं जाता मेरे भाई। अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत से, क्योंकि वारिसीन अंबिया हैं, हाँ, लोगों की जेबों पे नजर नहीं है, जो सही वारिसीन अंबिया हैं अल्लाह ताला के ऊपर नजर होती है। अल्लाह ताला गैब के खजानों से इंतजाम फरमाया करते हैं, दूसरों से अच्छा खाते हैं, दूसरों से अच्छा पहनते हैं, अल्लाह अता फरमाते हैं। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पीछे उस जमाने की CID अंग्रेज ने लगा दी कि भाई इनके पास रोजाना का ये जो इतना लंबा खर्चा तलबा का खर्चे के अलावा रोजाना का ये जो लंगर चलता है ये कैसे चल रहा है भाई? यकीनन इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, फॉरन फंडिंग केस कायम हो जाता है। ठीक है जी, मौलवी साहब के पास पैसा इतना आ रहा है भाई, ये रोजाना 15 आदमी 20 आदमी उस जमाने में उनके पास 100 आदमी रोजाना जमा हो रहे हैं, और 100 आदमियों का खाना सुबह नाश्ते में, 100 आदमियों का खाना दोपहर खाने में, फिर रात खाने में, भाई इतना पैसा मौलवी रशीद से के पास कहाँ आ रहा है? हाँ, तो मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुसलमान को, दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, इस हलक वाले को ही CID का आदमी मुकर्रर कर दिया गया कि इनके जराए आमदन मालूम करो, क्या इनका निजाम चलता कैसे, ये मदरसा कैसे चल रहा है, ये खानखा कैसे चल रही है, ये लंगर कैसे चल रहा है। वो रहा, उसने कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ से फंड आ रहा है, क्या हो रहा है। सही है जी, अब फॉरेन फंडिंग केस पकड़ा नहीं जा रहा था, वो बड़ा परेशान हो गया। पता है उसने कितना साल गुजारे हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल, ज्यादा नहीं गुजारे उसने, सिर्फ 10 साल गुजार दिए। और 10 साल हजरत से कहा, हजरत मैं आपको सच बताता हूँ, मैं तो CID का आदमी हूँ, मुझे आपके पीछे इसलिए लगाया गया है कि ये मालूम करूँ कि आपके पास जो है ना ये पैसे कहाँ से आते हैं, और साथ ही एक दरख्वास्त भी, अब मैं यहाँ से रुख्सत हो रहा हूँ, मेरी ड्यूटी कहीं और लग गई है, जेब से 2 रुपये हदिये के निकाले के इसको कबूल फरमा लीजिए। हजरत ने मुस्कुराते हुए उसको कबूल किया, क्या ऐसे ही चलता है, हाँ निज़ाम ऐसे ही चलता है अल्लाह का। सही है जी, जो मुखालिफ भी होता है ना अल्लाह ताला उसके दिल में डालते हैं, जा भाई देकर आ जा। एक अल्लाह वाला तालिब इल्म था, कसम खा ली कि आज अल्लाह मियाँ बिरयानी खिलाइएगा तो खाऊंगा वरना मैं भूखा सो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह वाला होना जरूरी है, अल्लाह पे नाज होता है तो काम ऐसे बना करता है। नाज उसको होता है जिसने अल्लाह ताला को मनाया होता है, उसको नाज होता है इस पर, हाँ तो फिर काम ऐसे बना करते हैं मेरे भैया। उसने कह दिया अल्लाह ताला से कि अल्लाह आज बिरयानी खाऊंगा, वो भी मुर्ग की बिरयानी खाऊंगा, छोले मिले हुए नहीं होने चाहिए, 2 नंबर, 1 नंबर क्वालिटी की बिरयानी खाऊंगा, बम्बई बिरयानी मसाले वाली जबरदस्त किस्म की। जाके मस्जिद में सो गया। वो तालिब इल्म मुसाफिर था, उस जमाने में जनाब मुसाफिरों का ख्याल करते थे। इमाम साहब ने कहा कि भाई आप मुसाफिर लग रहे, चले मेरे साथ खाना खा लें। कहा आपके घर में क्या पका? क्या मौलवी के घर में दाल चावल और क्या होगा? मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा अल्लाह से कहा बिरयानी खिलानी है, मुर्गी की खिलानी है, हाँ छोले भी मिक्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ओरिजिनल होनी चाहिए। कहा यार भाई क्यों नखरे कर रहा है, चल के खा ले जो अल्लाह का रिस्क उसको। मैंने मेरा मामला अल्लाह का मामला है, आप इसमें ना पड़े बीच के अंदर। इमाम साहब चले गए, फिर मौजिन साहब आए, भाई आप मुसाफिर है, चलिए खाना खा लीजिए हमारे साथ, जो जो है रूखी सूखी है हम भी खाएंगे आप भी खाएंगे, मुसाफिर की खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह के नबी का हुक्म है, आप हमारे मेहमान हैं। कहा आपके घर में क्या पका? कहा कुछ भी नहीं पका, कल की रूखी सूखी रोटी है और दाल बची भी है, आ जाइए। कहा मैंने तो अल्लाह से बिरयानी खाने का कहा, भाई भूखे मर जाओगे, चलो। हाँ उसने कहा भाई ये मेरा मामला और अल्लाह का मामला है। हाँ वो चले गए। कहा अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी है, आप भूखे रह जाएंगे अच्छी बात नहीं। कहा मैं भूखा रहूँ, मेरा अल्लाह मुझे भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह का करना, उस बस्ती के अंदर एक औरत का बच्चा खो गया, उसने मन्नत मांग ली कि अगर मेरा बच्चा मिला तो मैं किसी भी मुसाफिर को जो हमारी मस्जिद में ठहरा होगा उसको मुर्ग की बिरयानी खिलाऊंगी। ये यहां पे कह के चले गए, वहां उसका बच्चा मिला, उसने मुर्गी की बिरयानी बनाई, और इधर आई भी कोई मुसाफिर है, कहाँ है जी, ये खाना आपके लिए, बताओ खाना क्या है? कहा मुर्गी की बिरयानी। कहा अल्लाह ने मेरे लिए भेजी, भेज दो। तो अल्लाह ऐसे कराता है मेरे भैया। हाँ ये काम जो चल रहे होते हैं ना, पीछे कुछ होता नहीं है, अल्लाह ताला निजाम बनाया करते हैं। तो खुलासा ये कि जो शुरू बयान में मैंने अर्ज किया था कि जो लोग बेदीनी की तरफ हैं, बल्कि बददीनी की तरफ हैं, नमाज रोजा हज ज़कात सब का मजाक उड़ाया जा रहा है, दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, बुरके का मजाक उड़ाया जा रहा है, हा? तो उन लोगों के मजाक से मुतासिर होकर अपनी दाढ़ियों को मत मुड़वाओ मेरे भाई। जरा अपना चेहरा शीशे के सामने करना, और जिनकी दाढ़ियां हैं वो अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर, और जिन भाइयों की नहीं है हाथ जोड़कर कि आपकी इज्जत मेरे दिल में है, अर्ज करता हूं ये कहना, क्या ये चेहरा नबी के चेहरे के मुआफिक है या नहीं? क्या ये चेहरा मैं नबी के सामने ले जा सकूंगा कि मेरी शफाअत कर दीजिए? क्या मैं इस काबिल होऊंगा? क्या उस दिन अल्लाह के नबी की शफाअत के बगैर मेरी मग़फ़िरत हो सकेगी? खुद जवाब आएगा एक अच्छे मोमिन के दिल के अंदर कि भाई अपना चेहरा नबी जैसा चेहरा बना ले भाई, सबके तानों को छोड़ दे, अल्लाह के नबी ने तानों को झेला है। उस जमाने के अंदर भी जो है लुंगी ऊपर करना अल्लाहु अकबर बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, लुंगी नीचे होती थी बड़ा सरदार समझा जाता था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में मुखालिफत करते हुए जनाबे वाला निस्पिंडली अपनी लुंगी रखी, और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन तो शाख की जमात थे, देखा और अमल किया करते थे, हमारी तरह मौलवियों पे इल्ज़ाम नहीं लगाते थे जी मौलवी साहब ने बना लिया है। अच्छा भाई मौलवी साहब ने जनाजा भी बनाया था तो आप जनाजा बढ़ाना छोड़ दीजिए, मौलवी साहब ने निकाह भी बनाया है आप निकाह पढ़वाना भी छोड़ दीजिए, मकसद क्या हुआ, निकाह अपना मकसद जनाजा अपना मकसद, तो फिर मौलवी पे इल्ज़ाम नहीं, जहाँ अपनी नानी अम्मा का इंतकाल होता है वहाँ पर मौलवी का इल्ज़ाम लगाते हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहली अजान के बाद सुन्नत अदा करें।